ओम शांति। 15वीं शताब्दी, चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य सनातन गोस्वामी, उसके भी एक शिष्य थे वीरभद्र, उसके 1300 सन्यासी शिष्य थे, उनको शास्त्रों में नाड़ा कहा गया है। नाड़ा और नाड़ी, नाड़ा अर्थात जिन्होंने बाल मुंडवा लिए हैं, ऐसे वो 1300 तपस्वी ब्रह्मचारी होते हैं। और ये सारे 1300 लोग इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो जो कहते हैं वो सत्य होने लगता है, वो जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है, उनकी वाणी में ऐसी पावर आ जाती है। वो जहां जाते हैं उनके द्वारा चमत्कार होने लगते हैं। गुरु को चिंता होती है कि ये शिष्य मेरे से आगे जा रहे हैं, तो वो एक बार ऐसा प्रबंध करता है कि सारे शिष्यों से कहता है, कल सुबह स्नान कर तुम मेरे पास आ जाना। उनमें से 1300 में से 100 लोग स्नान करते और भाग जाते। जैसे उन्हें किस बात का आभास हो गया, वापस नहीं आते, क्योंकि उनको डर था कि गुरु ऐसी कोई बात हमसे कहने वाले हैं कि हम मना नहीं कर पाएंगे, और अगर हाँ किया तो फंस जाएंगे, इसलिए भाग जाते। 100 लोग बचते हैं 1200। तो गुरु के आश्रम में जब पहुंचते हैं तो गुरु आदेश देता है कि ये 1200 कन्याएं हैं, वैसे तो 1300 होती है, 1300 कन्याएं, इनके साथ एक एक को विवाह करना है। वैसे तो क्योंकि 100 भाग गए तो 1200 ही है, तो 1200 का विवाह होता है 1200 के साथ। और जिन कन्याओं के साथ विवाह होता है वो भी ब्रह्मचारिणी है, जिनको नाड़ी कहा गया है, नाड़ा और नाड़ी, और शादी हो जाती है। और उसके बाद उनमें जो भी पावर्स थी, जो भी शक्ति थी, धीरे 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 सब खत्म हो जाती। और गुरु यही चाहता था कि ये शिष्य मेरे से आगे जा रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा करूं कि जिनके अंदर जो पावर है और जिस पावर से ये कर रहे हैं, ये कैसे खत्म हो जाए। और वो यही युक्ति करता है, पर वो जो 100 थे वो भाग जाते हैं और बच जाते हैं। इस सत्य घटना का वर्णन इतिहास में है। एक योगी का बल, एक योगी की शक्ति, उसकी प्यूरिटी है। कुमार जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति ब्रह्मचर्य है। कुमार जीवन का सबसे बड़ा धन ब्रह्मचर्य है। बाकी सब ठीक है, अमृत वेला किया जा रहा है, मुरली सुन रहे हैं, सेवाएं बहुत कर रहे हैं, परंतु यदि प्यूरिटी खंडित हो रही है, जीरो, इसलिए अपनी इस प्रतिज्ञा को फिर से रिवाइज करनी। आत्मिक स्थिति में जो सुख है वो शरीर और शरीर के सुखों में नहीं है, इसलिए इस अभ्यास को बढ़ाना है, जो चेतना बहुत ऊंचे तल पर रहे, स्तर पर रहे, नीचे आए ही ना, क्योंकि नीचे आते ही स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भाव आता है, देह दिखाई देता है और देह का आकर्षण होता है, और जहां देह का आकर्षण होगा ऊर्जा नीचे बहेगी। संकल्प और ऊर्जा का संबंध है, ऊर्जा ऊपर बही तो ओज बनेगी, ओजस, ओज शक्ति, ऊर्जा नीचे बही तो जाकर शरीरों को जन्म देगी और नष्ट होगी। हमारी ऊर्जा कहां बह रही है? एक माली जिसके पास बहुत सारे फूल है, बहुत बड़ा गार्डन है, बगिया है, उस बगिया से मास में एक बार सारे फूल एकत्र करता है, इत्र बनाता है, रस पराग निकालता है सभी फूलों का और जाकर नाली में बहा देता है, तो इस माली को कौन सा माली कहेंगे? होशियार या बुद्धू, मूर्ख? मूर्ख। देह में भी ऊर्जा बह रही है जिसका संकल्प से संबंध है। संकल्प में देह भान, संकल्प में हलचल, संकल्प में आकर्षण, ऊर्जा नीचे बहेगी। हमारी ऊर्जा कहां बह रही है? तो स्वयं स्वयं को देखना है और इस कुमार जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान यदि किसी बात पर रखना है तो वो ये एकमात्र चीज है, जिस धारणा के लिए दादियों ने, दादाओं ने इतना सहन किया, जिसे एक धारणा के लिए इतने यज्ञवत्सों पर अत्याचार हुए, जिसे एक धारणा के लिए कितना संघर्ष कितनी माताओं ने किया, यदि उसी धारणा में हम कमजोर हैं तो चाहे ऊपर से कुछ भी कर रहे हैं वैसा जमा नहीं होगा। बाप केवल एक ही काम करने आए हैं, पतित को पावन, और कोई काम करने नहीं आए। साकार महावाक्य है बाबा के, बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, एक जन्म के लिए पवित्र बनो, बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, फॉर माय सेक, मेरी खातिर, मैं कह रहा हूं इसलिए, ये भूल जाओ उससे क्या फायदे क्या नुकसान, वो सब एक तरफ, क्योंकि अब मैं फाइनली कह रहा हूं, फॉर माय सेक, मेरे लिए, विष को त्याग करो, विष को छोड़ो, ढेर बातें मुरलियों की सुनी, समझी, लिखी, परंतु बहुत सारे कुमार हमको मिलते हैं और कहते हैं हमने ऐसे पाप कर लिए ब्राह्मण बनने के बाद, ब्रह्मा कुमार बनने के बाद, कि कहने में भी लाज आती है, शर्म आती है, कहीं वो मैं तो नहीं, आंखें क्या देख रही है, कान क्या सुन रहे हैं, हाथ क्या स्पर्श कर रहे हैं मनसा में, तो इस ब्रह्मा कुमार जीवन में सर्वोच्च प्यूरिटी का लक्ष्य रखना है, संपूर्ण प्यूरिटी का लक्ष्य रखना है, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। कई कुमार कहते हैं हाँ वैसे प्यूरिटी तो अच्छी है पर थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है। अव्यक्त महावाक्य बाबा के 15th नवंबर 2003 बच्चे बाप से कहते, बाबा थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत है, सफेद कागज पर काला दाग है, मैं क्या कर रहा हूं। पवित्रता कितनी अखंड है। यहां से मधुबन गए, बाबा से मिले, और फिर भी वहां पर भी ब्रह्मचर्य खंडन, ऐसा भी अनुभव सुनाते जो हाथ राखी बांध रहा है उसको पकड़ने का संकल्प न करना। क्या ऐसी धारणाएं करे जिससे ये जीवन श्रेष्ठ बन जाए। भगवान को नास हो कि ये है। क्या ऐसा करे कि स्वप्न भी शुद्ध हो जाए। तो आज हम इस व्रत की धारणा के लिए, कुमार जिससे कमाल कर दे उस धारणा के लिए, जिससे ये प्यूरिटी सहज हो जाए इस धारणा के लिए, जिससे हम आदर्श बन जाए इस यज्ञ में इस धारणा के लिए, जिससे हर बहन को नाज हो कि ये हमारा भाई है इस धारणा के लिए, जिससे हमारे सभी वरिष्ठों को नाज हो कि प्यूरिटी ऐसी होनी चाहिए। मधुबन में एक बड़े बुजुर्ग भाई है, वो अनुभव सुनाते हैं, और ऐसे भाई है कि जो बहनों के कमरे में जाए तो उनको कोई रोकता नहीं, इतनी प्योर आत्मा है, बहुत सेवाधारी, सबकी सेवा करते हैं, बुजुर्ग है पर छोटो छोटो की सेवा करते हैं। उनके जीवन का एक अनुभव है मधुबन के आंगन में, वो सुनाते हैं। एक बहन सामने से जा रही थी, उनके जीवन का पुराना अनुभव। उस बहन को उन्होंने पूछा, बहन जी आप कहां से हो? पीछे मनमोहिनी दीदी थी, उन्होंने कहा, क्यों शादी करनी है क्या? तुमको क्या करना है? तो इस धारणा के लिए ऐसी हम 16 बातें देखेंगे जिससे ये व्रत इतना कूट कूट के इतना पक्का हो जाए हमारे अंदर कि फिर इसका कभी खंडन ना हो और पश्चाताप ना हो, क्योंकि कुमार जीवन में, ब्रह्मचारी जीवन में सबसे ज्यादा पश्चाताप का एक ही कारण है, सेवा न की इसका इतना पश्चाताप नहीं है, मुरली नहीं पड़ी इसका इतना पश्चाताप नहीं, अमृत वेला नहीं हुआ इसका इतना पश्चाताप नहीं, जितना पश्चाताप विकारी संकल्पों का है और ऊर्जा का शरीर से बह जाने का है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा था कि उस सभा में इतने बड़े बड़े लोग थे, विद्वान लोग थे, फिर भी आपका नाम बहुत हुआ, लोगों को आपने जो कहा बहुत प्रभावित किया, क्या कारण था? वो तो सबसे छोटे थे उसमें, द यंगेस्ट 28 ईयर ओल्ड, और वहां बैठे हुए शास्त्रों के ज्ञाता थे, बड़े बड़े पंडित, धर्म सम्मेलन था। उन्होंने कहा, आई हैव नॉट अलाउड माई माइंड टू हैव अ सिंगल सेक्शुअल थॉट इन माई लाइफ एंड दैट्स व्हाई द वाइटल फोर्स, द वाइटल एनर्जी हैज टर्न्ड इनटू ओजस एनर्जी। ब्रह्मचारी का शरीर अलग तरीके से काम करता है, साइंस उसे जान नहीं सकता, सूक्ष्म शक्ति से, सूक्ष्म रीति से शरीर की पालना होती है, तो वो कौन सी धारणा है? इसको आप अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे। इंग्लिश में शब्द है ब्रह्मचर्य, BRACH, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बहुत सारे अर्थ हैं। सबसे पहला अर्थ वह स्थिति जो परमधाम में है, आत्मा की वह स्थिति जो आत्मा ब्रह्मलोक में स्थित है, ब्राह्मी स्थिति, फर्स्ट परिभाषा। दूसरी परिभाषा, BRACHARYA, व्रत। वह स्थिति जो आत्मा की परम धाम में है, एक। वह स्थिति जिसमें आत्मा ने काम विकार का संपूर्ण नाश कर दिया है। तीसरा, वह स्थिति जिसमें सारी की सारी कर्मेंद्रियां वश में आ गई है। वह स्थिति जो ब्रह्माचारी है, ब्रह्मा के आचरण वाली जो स्थिति है, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। शास्त्रों में लिखा गया है, एक तरफ एक ब्रह्मचारी है और दूसरी तरफ चारों वेद, सारे शास्त्र है। ब्रह्मचर्य का पलड़ा भारी है। एक रात जो ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करता है, उसे एक यज्ञ इतना पुण्य प्राप्त होता है। और संसार में जितने भी योगियों का पतन हुआ, क्रोध से नहीं, लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, द्वेष से नहीं, इस एक विकार के कारण। और जब तक इसके विषय में चर्चा ना हो, जब तक इसके विषय में डिटेल चर्चा ना हो, इससे भाग कर नहीं होगा। संसार में दो मार्ग अपनाए हैं लोगों ने, एक वो मार्ग भोग का, भोग लो शायद किसी दिन वैराग आ जाएगा, पर भोगने से नहीं हुआ, क्योंकि भोगने से तो संस्कार और प्रगाढ़ हो गए। दूसरा मार्ग था दमन का, सप्रेशन, दमन कर दो, भाग जाओ किसी जंगल में, स्त्री का मुख देखना ही नहीं, नारी द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, ये मार्ग। पर जो सन्यासी, जो साधु, जो वैरागी, जो तपस्वी संसार से भागकर वन में गए और वहां तपस्या करने लगे, शास्त्रों में दिखाए अप्सराए। कौन है ये अप्सराए? क्या ऐसी कोई अप्सराए जो ऊपर से आती है? मेंटल प्रोजेक्शन है, सप्रेस्ड वासनास, सप्रेस्ड इमोशंस, जो अंदर दबा था वही बाहर प्रक्षेपित हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है। ये दूसरा मार्ग है। विदेश में एक सन्यासियों का ग्रुप है जिनको कहते हैं फ्लैजिलिस्ट। अपने पास एक चाबुक रखते हैं, अगर विकार का संकल्प आया तो अपने आप को मारते हैं, सजा, सेल्फ पनिशमेंट। ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है ये कि नहीं आएगा, परंतु परिणाम उल्टा हुआ। जितना मारने लगे और जितना लहूलुहान होने लगे, उतने वो संकल्प और ज्यादा आने लगे, फिर उल्टा ही परिणाम हो गया। वो मार्ग फेल हुआ। एक तरफ दमन, दूसरी तरफ भोग। भगवान ने ना तो दमन सिखाया ना तो भोग सिखाया, एक बीच का मार्ग है, प्रेममयी संयम। हमारा जो ब्रह्मचर्य है वो प्रेममयी संयम है, जबरदस्ती का नहीं, प्रेममयी, श्रीमत अनुसार। और ये एक ही मात्र मार्ग है जिससे इसका पालन किया जा सकता है। तो क्या हम करें कि जिससे ये धारणा बहुत बहुत मजबूत हो जाए? इसके लिए थोड़ी सा मेडिकल की बातें भी जाननी पड़ेगी, मेडिकल साइंस की, फिजियोलॉजी की, एनाटॉमी की। शरीर की रचना की, कुछ हार्मोन्स की, न चाहते हुए भी क्यों व्यक्ति गिर पड़ता है विकार में? किसने सिखाया उसको? कौन सिखाता है? किसी किताब में लिखा नहीं। व्यक्ति, बच्चा घर में पैदा होता है, उसे मॉरल साइंस ही सिखाया जाता है, अच्छी बातें ही सिखाई जाती है, कहां से सीख लेता है? यह भी आश्चर्य है। तो ऐसी हम 16 बातें देखेंगे इस धारणा के लिए, क्योंकि इनमें से एक एक बात ऐसी है, यदि कोई एक भी बात कर ले तो इस विकार से छूट जाएगा। और जो भी सेवाएं, जो भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ और जो भी श्रेष्ठ चिंतन होगा, इसी अवस्था में हो सकता है। जो जिसका ये खंडन हो रहा है वो ज्ञान का चिंतन भी नहीं कर सकता। शेरनी का दूध है, ऐसे वैसे बर्तन में नहीं ठहरेगा। बर्तन शुद्ध चाहिए। सबसे पहली बात, बिजी हो जाओ। जो खाली है उसी के पास विकार आएंगे। 24 घंटे में से 10 मिनट हमने ऐसे छोड़ के रखे जहां कोई काम नहीं है और हाथ में मोबाइल है, उसी से माया प्रवेश करेगी। स्वामी दयानंद से किसी ने पूछा कि आप ब्रह्मचारी हो, आप अकेले रहते हो, क्या काम विकार आपको नहीं सताता? उन्होंने कहा कि हाँ, सताता है, रोज ही आता है कमरे के बाहर, पूछता है मैं आऊं? मैं कहता हूं अभी बिजी हूं, बाद में आना। उसको चांस ही नहीं मिलता क्योंकि मैं निरंतर ही बिजी हूं, हमेशा ही बिजी हूं। कुमार जीवन अर्थात हार्ड वर्क, जिसमें खुद को बिजी कर दो ताकि रात में लेटो तो तुरंत 1 सेकंड में नींद आ जाए। नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, पूछा आप कितना घंटा सोते? उन्होंने कहा 4 घंटा। और उन्होंने कहा मैं लेटता हूं 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है, 30 सेकंड्स। और जो करवटे बदलते रहते हैं वहां माया प्रवेश करती है, और जो करवटे बदलते रहते हैं और बेचैन रहते, सेक्सुअल फैंटेसीज एंटर देयर हार्ट्स एंड माइंड। इसके लिए दिनचर्या को ऐसा सेट करो कि जिसमें कोई टाइम खाली ही नहीं। अमृत वेला उठो, अमृत वेला, उसके बाद का टाइम, वहां पर माया प्रवेश करती है। अमृत वेले के बाद नींद करने की किस किस को आदत है? बहुत अच्छी नींद किस किस को आती है? सभी को। अमृत वेले के बाद का समय श्रेष्ठ चिंतन का है और मनन का है। अध्ययन का है। उस समय सो जाना अर्थात की कमाई चट कर देना। अपनी दिनचर्या को ऐसा सेट करना है जिसमें आराम ठीक से हो। कई ऐसे भी है जिनको दिन में आराम नहीं मिलता, परंतु वो अपनी दिनचर्या को उस रीति से सेट करे। फिर ये कारण नहीं दे सकते कि हमको टाइम नहीं है दिन भर में। बिजी, इतना बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो कि कहीं कोई चांस ही नहीं है। कोई ये भी कह सकता है हम तो सारा दिन कंप्यूटर में है, बिजी है। वो बिजी नहीं, वो भी बिजी, मनसा से भी बिजी। सुमन का अभ्यास, कुछ चिंतन, कुछ पढ़ाई होती रहे। सबसे पहला तो बिजी है। दूसरा है रिलेशनशिप आर कल भी कहा था, जो भी रिलेशनशिप में फैमिलियरिटी आएगी, मेडिकल में इस तरह दिखाते हैं मेल फीमेल, जो भी रिलेशनशिप में फैमिलियरिटी आएगी, दो चीजें हो सकती है, अत्यंत लगाव या तो घृणा। लगाव भी ऐसा कि जो बेचैनी क्रिएट करेगी। एक माता हमसे मिली थी अभी, जिसने अपने पति के साथ 12 वर्ष संघर्ष किया प्यूरिटी के लिए, और अभी वो माता कहती है कि सेंटर पर एक भाई है, जब तक उसको नहीं देखती बेचैन रहती हूँ, ऐसा प्यार हो गया। कहाँ बुद्धि, संघर्ष किया 12 वर्ष और यहाँ की बुद्धि कहीं और फंस गई। पर वो कहती मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उसकी तरफ से हुआ। हमारी ओपीडी में जैन साध्वी आती है, माउंट अबू में दिलवाड़ा है, उनके गुरु आते रहते हैं वहां पे, साध्विया पैदल आती है नीचे से माउंट अबू से, आबू रोड से, या तो फिर नीचे अनादरा से ऊपर चढ़कर पैदल बिना चप्पल के। वो जो साध्विया आती है दिखाने के लिए एज डॉक्टर के पास, अगर वहां कोई भाई बैठा होगा 20 मिनट 28 मिनट पहले, बैठती नहीं है वहां पर, खड़ी रहती है। वो कहते हैं वाइब्रेशंस होंगे वहां पर। उनको भगवान मिला नहीं है, भगवान ने उनको आके नहीं कहा प्योर बनो, योगी बनो, हमें मिला है। पर उनकी कुछ कुछ धारणाएं हमसे भी ज्यादा पावरफुल है। एक ब्रह्मा कुमार और एक ब्रह्मा कुमारी किसी एकांत स्थान पर ज्ञान की भी चर्चा करे चुपचाप, उसमें भी माया प्रवेश करती है। इसके लिए जो भी संबंध होंगे उसमें डिटैचमेंट हो। अगर टू मच कांटेक्ट है और टू मच एसएमएस है और टू मच व्हाट्सएप है और टू मच बातें करना चालू है, 3 मिनट से ज्यादा किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। 3 मिनट्स, दैट्स इट। हाँ, वो सेवा समाचार है तो अलग बात है, और कोई बातें हैं तो अलग बात है, पर पर्सनल रिलेशनशिप्स, इस अलौकिक परिवार में लौकिकता नहीं लानी है। यह ईश्वरीय परिवार है, लौकिक परिवार नहीं है। यहां एक दूसरे के साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, पर्सनल मैसेजेस, रोमांटिक फीलिंग्स पतन करेगी। और कितने लोग गिरे हैं और अब पछता रहे हैं और भाग के शादियां की है, फिर दादी के पास गए, माफी मांगी 6 मास तक, फिर माफी हुई, अभी वो भी है और वो भी है, एक इधर है एक उधर है, नौकरी कर रहे हैं, पहले समर्पित जीवन जी रहे थे। क्षणिक आवेग पतन करेगा, इसके लिए संबंध। एक कहानी हम हमेशा बताते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई शोशीर कविता बंगाली में, द लास्ट पोएम। एक स्त्री है एक पुरुष है, दोनों को एक आपस में बहुत प्यार है, बहुत चाहते हैं। स्त्री बहुत अमीर है, पुरुष जो भाई है गरीब है, दोनों शादी करना चाहते हैं। वो स्त्री उस पुरुष से कहती है मैं तुमसे शादी करूंगी पर एक शर्त है, शादी करने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाऊंगी उधर और बीच में झील और मैं इधर रहूंगी, शादी के बाद हम साथ में नहीं रहेंगे। वो कहता है व्हाट, ऐसी कैसी शादी है, ये भी कोई शादी है, तो कर रही क्यों? वो कहती है शादी तो ऐसी होगी, तुम उधर से आ रहे हो मैं इधर से आ रही हूं, ओम शांति, तुम नौका विहार कर रहे मैं नौका विहार कर रही हूं, हाय हेलो और बाय, हम रहेंगे अलग। वो कहता है कि क्यों? वो कहती है अगर तुमको किसी और से शादी करनी है तुम कर लो, बाकी मैं केवल तुमसे प्यार करती हूं और तुम्हारी याद में जीवन भर रहूंगी, अविवाहित, अब बोलो करनी है तो करो। वो कहता है आखिर क्यों? वो कहती है हमारा जो बॉन्ड है, रिलेशन है, उसमें जो फ्रेशनेस है, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों साथ आ जाए वो समाप्त हो जाए, वो डिटैचमेंट हमेशा रहे हम दोनों के बीच, वो प्यार जो अब है वो खत्म ना हो जाए। इसके लिए तुम उधर हम इधर, गए सेवा की, ओम शांति, टाटा बाय बाय, हम अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, चाहे दो लोग एक जगह रह रहे हैं, सेवा केंद्र में रह रहे हैं, मधुबन में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, कहीं पर भी रह रहे हैं, हम अलग वो अलग, बारिश बहुत अच्छी है, जमीन भी बहुत अच्छी है, दोनों मिल जाए तो कीचड़ होगा। डिटैचमेंट इन रिलेशनशिप्स. तीसरा अमृत वेला, सबसे पावरफुल धारणा है. जिनका अमृत वेला बार बार मिस हो रहा है, रोज रोज मिस हो रहा है, मिस नहीं हो रहा है पर साधारण हो रहा है, मिस नहीं हो रहा है साधारण नहीं परंतु व्यर्थ चल रहा है, जिसमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है, उनको सारे दिन भर शरीर खींचेगा, शरीर की याद आएगी, शरीर आकर्षित करेगा, शरीर का सौंदर्य खींचेगा, जिसमें कोई सौंदर्य है नहीं, बकेट ऑफ यूरिन एंड स्टूल, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है. यह शरीर मलमूत्र भरा है जिसमें, पर वही सुंदर लगेगा, वही खींचेगा, उसी को देखने की इच्छा होगी. कोई छुप के इधर तो कोई छुप के उधर. अमृत वेला की किताब है, कितनों ने पढ़ी है? जिसने नहीं पढ़ी है आज से या कल से उसको पढ़ना चालू करेंगे. अगले एक मास तक वो किताब पूरी हो जानी चाहिए, उसका एक एक शब्द एक एक लाइन याद हो जानी चाहिए, तब तक उसको पढ़ना है. जब तक ये धारणा नहीं होगी, आत्मा की प्यास सुख की है, उसको अमृत वेला अतिंद्रिय सुख नहीं दो तो सारे दिन भर इंद्रिय सुख खींचेगा, इंद्रिय उत्तेजित होगी, इंद्रियों की उत्तेजना योगियों का नरक है. एच होली कंपनी, किसके संग में हम रह रहे हैं? यह ब्राह्मण संगठन एक किला है, जब जब इससे बाहर कोई गया है गिरा है. इसके लिए कुमारों का अपना एक संगठन हो, एक पांडव भवन, उसमें दो ही लोगों की आवश्यकता है, ज्यादा हो तो बहुत अच्छा, जो कि रोज रात में सोने से पहले बैठे चर्चा करे ज्ञान की, या रविवार को एक दिन चर्चा करे, या थोड़ा कांटेक्ट में रहे. एकदम ही डिटैच हो जाना, संगठन से बाहर निकल जाना पतन करेगा. कई लोग, शास्त्रों में कहानी है, सुखदेव और व्यास की. सुखदेव कहता है मैं, वो तो परम तपस्वी है, उसके मन में विकार है ही नहीं, वो कहता है मैं अकेला रह सकता हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है. उसके पिता व्यास उसको समझाते ऐसा नहीं है, तुमको सबके साथ रहना चाहिए, माया आ सकती है. वो कहता बिल्कुल नहीं आएगी. तो गुरु कहते हैं ठीक है, मैं अभी 3 मास के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अकेले रहना. वो गुरु चले जाते हैं, सुखदेव अकेला तपस्या कर रहा है अपनी कुटिया में. एक रात बारिश हो रही है, अंदर बैठा है और आवाज आती है किसी स्त्री की, बारिश में भीग रही है. वो बाहर आके देखता है तो देखता है ये माता. संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के जैसा होता है, पिघल जाता है, रहम से भरा हुआ है. उसको दया आती है, कहता है कि आप थोड़ा यहाँ आके खड़े हो जाओ. तो वहां आके खड़ी हो जाती है. फिर अंदर जाता है तो उसकी आवाज आती है, उसको ठंड लग रही है. सोचता है, कहता है अंदर बाहर अंदर आके बैठ जाओ. फिर उसको थोड़ा शॉल वगैरह देता है, फिर अपनी साधना करने लगता है. परंतु अब साधना में कुछ कुछ हलचल हो रही है. उससे थोड़ी बात करता है, थोड़ा और आगे बढ़ता है, उसके पास जाता है, उससे पूछता है आपको क्या चाहिए, और कुछ चाहिए क्या? और फिर उसके हाथों में हाथ रख के कहता है घबराओ नहीं, मैं हूं आपके साथ. और उतने में व्यास प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं बच्चू अब कहाँ है तुम्हारा ब्रह्मचर्य? तुम कहते थे ना मैं अकेला रह सकता हूं, अब कहाँ गया? सत्संग, ब्राह्मणों का संग, उसमें भी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं का संग अगर नहीं मिल रहा है तो किताबें हैं, कुछ ऑडियोज है, उन श्रेष्ठ विचारों के संग में रहना, पर नीचे नहीं गिर जाना. नीचे गिरे कि गए. और जो काम की चोट है, बाबा ने कहा 5वीं मंजिल से गिरना है, मुंह काला करना है. क्रोध के लिए पतित नहीं कहा गया है, क्रोध के लिए काला मुंह नहीं कहा गया है, क्रोध के लिए हड्डियां हुड़गुड़ टूटना नहीं कहा गया है, इसके लिए कहा गया है केवल. तो हम होली कंपनी, उसके बाद में एम मुरली चिंतन। जब तक श्रेष्ठ चिंतन नहीं, कुछ ना कुछ होते रहेगा। महान चिंतन, थोड़ा सा ज्ञान का मनन, रोज टॉपिक्स निकालना, उसके ऊपर थोड़ा लिखना। जब तक ये नहीं होगा तब तक स्थिति श्रेष्ठ नहीं बनेगी। विचार व्यक्ति खींचते रहेंगे। इसके लिए बिजी रहने का सबसे श्रेष्ठ साधन है मुरली का चिंतन करना। रोज की मुरली से एक पॉइंट निकाल लो, जैसे आज की मुरली शांति, क्या क्या सुमान दिए गए शांति के विषय में, संसार की आत्माओं की क्या दशा है उसके विषय में, भय के क्या कारण है उसके कारण ढूंढो। केवल मुरली पढ़ ली, सुन ली, सुना ली, काम पूरा हो गया, नहीं, भय मेरे जीवन में कहीं तो नहीं। शांति के क्या प्रयोग किए जा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ पीस क्या हो सकते हैं, उसे एक ही मुरली में कितने टॉपिक्स छिपे हुए हैं। एक दिन काफी नहीं है। हमने केवल गए सेंटर पर, बाबा के महावाक्य सेंटर पर जाना, मुरली सुनना, डायरी में नोट करना, आ जाना, यह है पुरानी चाल। साधारण पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ आज का है बाबा ने, अब नहीं तो कब नहीं, पर्सनल मुलाकात, ये स्लोगन है तीव्र पुरुषार्थी का। अब भी करना है, राइट नाउ, कल करूंगा नहीं, अभी। मुरली चिंतन, '69 से लेकर तो 2017 तक ऐसे कितने हैं जिन्होंने सारी अव्यक्त वाणियां पढ़ी है? एनीबॉडी? पेंडिंग काम बहुत ज्यादा है, आराम से हम कैसे बैठ सकते हैं? हो गया ये पढ़ के? 69 से लेके तो 2017 तक की सारी अव्यक्त वाणियां। और फिर कोई पेपर आएगा तो हम कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो बाबा ने बोला ही नहीं। बोला, तुमने पढ़ा नहीं। एक एक चीज बाबा ने बोल के रखी है, एक एक चीज, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। 26 जून 1969 अव्यक्तवाणी, 26 जून 1969, अब ज्ञान पूरा हुआ, बाप अभी मिलने आएंगे। केवल ज्ञान पूरा हो चुका है 69 में, ये रिवाइज है सारा। और हमने पढ़ाई ही पढ़ी नहीं। स्मार्ट स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट, ईश्वरीय स्टूडेंट, रूहानी स्टूडेंट की जो निशानी है, उनमें से कौन सी निशानी हमारे पास है? लेट एडमिशन ली, पुराना सिलेबस पढ़ा ही नहीं, और व्यर्थ में लगे हैं, व्यर्थ की बातों में। एम, उसके बाद में ए, एपिटाइट, एपिटाइट अर्थात भूख अर्थात भोजन। ब्रह्मचर्य और भोजन का संबंध बहुत गहरा है। जितना भोजन गरिष्ठ होगा, जिसमें लक्ष्य केवल स्वाद होगा, वहां पर गिरना होगा। जगदीश भाई जी ने अपनी एक किताब में लिखा है, और थोड़ा और थोड़ा, थोड़ा सा और डालो, थोड़ा सा और डालो, थोड़ा मसाला, थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्च, थोड़ा थोड़ा करते करते हथौड़ा लगेगा। एक फुल क्लास है, चैप्टर है भोजन के विषय पर। भोजन के विषय में यह सोचना है क्या कम किया जा सकता है, क्या बढ़ाया जा सकता है, ये नहीं। भोजन के पहले की अवस्था और भोजन के बाद की अवस्था, वही लाइटनेस रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भोजन खाने के बाद, तीन चीजें होनी चाहिए उसमें, भोजन में सम्यक आहार अर्थात तीन बातें। पहली, नो एक्साइटमेंट, उसमें उत्तेजना उत्पन्न ना हो। खा लिया और उत्तेजना उत्पन्न हुई, मतलब जरूर राजसिक भोजन था। दूसरा, नो प्रमाद, प्रमाद अर्थात आलस, सोने की इच्छा होती है, इतना खा लिया। और तीसरा, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि खा लिया और फिर डायरिया। एक राजा था विदेश में, नीरो, नीरो अपने दो फिजिशियन रखे थे डॉक्टर, इतनी खाने की इच्छा थी, इतना खाता था और डॉक्टरों को बोल के उल्टी करवाता था, फिर खाता था, फिर खाया, फिर डॉक्टरों के पास उसके पर्सनल फिजिशियन दो वो रेचक उल्टी कराते थे, फिर खाता था, दिन रात खाते रहता था। ग्लटन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्लटनी, खाऊं क्या खाऊं, बाजू की थाली में ज्यादा ध्यान जाता है, ये सब्जी कहां से लाई, मधुबन में तो बहुत ज्यादा जाता है, हमारी थाली में तो नहीं है, कहां बनी, एक्स्ट्रा है क्या। तीन बार ब्रह्मा भोजन और पांच बार टोली, हम महान तपस्वी आत्मा है, ऐसा हमारा स्लोगन है। एपिटाइट कंट्रोल इज स्ट्रांगली कनेक्टेड, कंट्रोल ऑफ पैलेट इज इक्विवेलेंट टू कंट्रोल ऑफ ऑल द सेंशुअल डिजायर्स। ये जितना सादा होगा उतनी पावर ज्यादा होगी, ये जितना हेवी होगा उतना माइंड हेवी होगा, वो जो लाइटनेस है, वो जो सोल कॉन्शियस स्टेज है, वो नहीं होगी। इसके लिए संयम, मित आहार, इस पर ध्यान। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण, अभी हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, कितना 10 मिनट का ब्रेक, क्योंकि ये जो सी है ये सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बातें हैं, ऐसी 8 बातें हैं इसमें, उन 8 बातों में से एक बात का भी खंडन, अर्थात ब्रह्मचर्य का खंडन, आप लोगों ने बहुत बार सुनी भी होगी, लिखी भी है यहां वहां, परंतु सोचो कि ये रिवीजन है, क्योंकि एक दिन की क्लास नहीं है, ये एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की शिक्षा नहीं है, हमेशा की है। तो अभी हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 बातें देखी है, 10 बातें और बाकी है, तो 5-10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद में ओम शांति।